पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। माना जिस तन में प्रवेश करके सुप्रीम सोल बाप का पार्ट बजाता है, वो अनिश्चय और निश्चय के चक्र में नहीं आता। दूसरी जितनी भी मनुष्य आत्मा है, जब तक ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं होता तब तक कुछ न कुछ निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि के चक्र में आती है। मेरी बहन न्यारी है, मुझे कहते ही है निराकार परमपिता परमात्मा। क्या कहते हैं? कैसा परमपिता? निराकार परमपिता। मेरी यादगार है मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में मेरी क्या यादगार थी? नहीं,
हीरा।
शिवलिंग में जड़ा हुआ हीरा, वो निराकार की यादगार। हीरा बिंदुवत रखा हुआ था, वो है मेरी यादगार, माने निराकार शिव की यादगार। और हीरा जिसे गोल पत्थर में रखा हुआ था, वो गोल पत्थर है, लाल पत्थर है, पिता की यादगार, मुकर्रर रथ की यादगार। बोला मुझे कहते हैं निराकार परम पिता। कैसा पिता? परम पिता, माने पिताओं के बीच में जो परम पार्ट धारी है, उस पिता से बड़ा पार्ट और किसी का पिता की क्यों प्रजापिता का नहीं है? प्रजापिता का पार्ट तो है, लेकिन प्रजापिता भी अपना बाप किसको मानता है? शिव बाप को अपना बाप मानता है। क्यों मानता है? वो तो बुद्धि मनुष्य शक्ति का बाप है, तो शिव बाप को बाप क्यों मानता है? सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि आत्माओं को, चाहे वो हीरो पाठकारी आत्मा क्यों न हो, उसको भी ज्ञान की पहचान, बाप की पहचान देने वाला सुप्रीम सोल है। राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, वो अपने पार्ट को नहीं जानती। इसलिए गीता में भी कहा गया, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। एक एक के जन्मों को तो बाप नहीं बा करके बताता है, लेकिन फार्मूले बता देता है ज्ञान की, कि ये फार्मूले हैं जिनके आधार पर तुम बच्चे अपने पार्ट को पहचान सकते। तो उनका नाम है परमपिता परमात्मा, परमपिता पहले और परमात्मा बाद। क्यों? परमात्मा परमपिता कह दे तो
परमपिता
पहले। हाँ, परम पिता पिताओं के बीच में जो बड़ा पाठधारी पिता है, वो सबका पिता, प्रजा पिता का भी पिता है। और परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है, वो प्रजा पिता है, हीरो पाठधारी। इसलिए परमात्मा बाद में और परम पिता पहले। जैसे शिव शंकर, पहले कौन? शिव, और बाद में कौन? शंकर। क्यों शंकर शिव क्यों नहीं कह देते? क्योंकि जो बाप है बड़ा, वो पहले रखना पड़े, और जो बच्चा है वो बाद में रखना पड़े, और दोनों को मिलाते भी है साथ साथ। शिव शंकर को साथ साथ मिलावेंगे, शिव ब्रह्मा को नहीं मिलावेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों? तीन मूर्तियों में विष्णु की मूर्ति नहीं है क्या? ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है क्या? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तो ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति को निकाल देते हैं क्या? या ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं जोड़ते?
आप समान स्टेट में रहने वाला शक्ति,
क्योंकि बाप समान 100% स्टेज को धारण करने वाला वो एक ही निकलता है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को जो शिक्षा देता हूँ वो बाप समान बनने की शिक्षा देता हूँ। जैसी बाप की स्टेज वैसी ही बच्चों की स्टेज होनी चाहिए। तो बाप की स्टेज है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो तो सदा शिव है, तो सदा काल की उसकी स्टेज है। लेकिन संगम युग में जिसमें बाप पढ़ाने के लिए आता है, तो जब पढ़ाई पूरी होगी तो कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो उस स्टेज को पहले प्राप्त करे। तो जो बच्चा उस स्टेज को प्राप्त करता है उसका टाइटल पड़ जाता है देवताओं में बड़ा देवता, देव देव महादेव, और उसी बच्चे का नाम शिव के साथ ऐड किया। नहीं तो प्रदर्शनी में बेसिक नॉलेज में लोग पूछते हैं, तुम कहते हो शिव शंकर अलग अलग है और भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर एक ही माने जाते हैं, तो कौन झूठा कौन सच्चा? भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक क्यों कर दिया है? तो आने वाले जिज्ञासु कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। तो जो एडवांस नॉलेज लेने वाले नहीं है वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं, या तो बोलते ही कोई शंकर पार्टी का है। तो समाधान तो करना चाहिए, जो भी प्रश्न पैदा होता है प्रश्न का समाधान जरूर होता है। तो ये समाधान है कि 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता पहले पहले बाप समान स्टेज को नहीं प्राप्त करता सिवाय शंकर के। इसलिए जो होते सोवर पहला नंबर, तो जो पहला नंबर जाता है उसी का नाम बाप के साथ ऐड कर दिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, क्या कहते? शिव शंकर भोले भाले, भोले के साथ कौन भाले। मैं टाइटल में भी भोले पहले भाले बाद, शिव पहले भाला बाद, शिव भोला भाला। तो शिव का टाइटल हुआ भोला, बहुत भोला है, और शंकर का टाइटल हुआ भाला, और उनके साथ हाथ में हथियार भी कौन सा दिखाया जाता है? त्रिशूल, उसमें 3 भाले लगे हुए, भाले माना कांटा होता है ना, तो वो तो छोटा कांटा होता है, और भाले में कैसा कांटा होता है? मोटा बड़ा कांटा। बाबा कहते हैं मैं बड़े से बड़े काम ही कांटे में आता हूँ, छोटे मोटे काम ही कांटे में नहीं आता हूँ। किसमें आता हूँ? बड़े से बड़े काम ही कांटे। तो जितना जास्ती जो विशेष होगा 63 जन्मों में, वो उतना ही ज्यादा तीखी भाषा बोलने वाला होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में राम के बाण बहुत प्रसिद्ध है। किसके बाण? राम के बाण। वैद्य लोग जब दवाइयां देते हैं तो जब अच्छी दवाई देंगे अच्छी असर करने वाली तो कहेंगे ये राम बाण दवा है, ये अचूक काम करेगी। तो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में असुरों को घायल करके उनको परिवर्तन करने का कार्य राम के बाण ही करते हैं। कृष्ण की मुट्ठी मीठी मुरलिया से मीठी मीठी तान से वो असुर चेंज होने वाले नहीं। बोला उनका नाम शिव है, उनका इनका उनका इनका नहीं, माने इनके द्वारा जो पाठ बजाता हूँ इससे सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला है। उनका नाम, उनके द्वारा जो मैं पाठ बजाता हूँ उससे सारी सृष्टि का कल्याण होने वाला, शिव माना कल्याणकारी। वो कब देह में नहीं आता है, जो शिव है वो देह में प्रवेश तो करता है लेकिन देह में भान में नहीं आता, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, उसके नीचे फिर आओ सूक्ष्म पतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का तो नाम रूप देखने में नहीं आता है, क्या बात हुई? सूक्ष्म पतन है, सूक्ष्म पतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनका नाम रूप किसका देखने में आता है? संसार में भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, चित्र बनते लेकिन वो तो निराकार है, वो कम साकार नहीं बनती। पूजा भी निराकार की ही होती है, क्या पूजा का आधार? क्या पूजा का आधार है? प्योरिटी। जो आत्मा जितनी ही जास्ती निराकारी स्टेज में स्थिर होगी संगम में वो उतनी ही ज्यादा पवित्र मानी जाएगी, और जितना देवान रह जाएगा उतनी ही अपवित्र मानी जाएगी। तो निराकारी कहो या पवित्र कहो, पूजा भी निराकार की होती है तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखे हैं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती और ना विचित्र की होती, ना बिंदु रूप निराकार की कोई पूजा करता है और ना कोई चित्रों को बनाकर उनकी पूजा करता है। कहां सतयुग त्रेता, तुम भक्ति मार्ग के चित्रों को अच्छी रीति जानती हो, जिन चित्रों के बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं में आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है, उनका कोई चित्र ऐसा नहीं है जो पतित पावन कहा जाए। क्यों? क्योंकि निराकार ही पतित पावन है। जो निराकारी स्टेज को धारण करता है तो संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। अगर वो मुकर्रर रथ के द्वारा निराकारी स्टेज को धारण न करे तो दुनिया में उसको कोई पहचान भी नहीं सकता। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। संसार में सुख बनाने वाला सुखी शक्ति का, दुख का हरण करने वाला और पतितों को पावन बनाने वाला। तुम और कोई भी चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म मद्रवासी, तो पहला तबका सूक्ष्म बतनवासी या दूसरा तबका पर सूक्ष्म बतनवासी ऊंचते ऊंच कौन है?
शंकर।
तीन तबके है ना, पहला तबका ऊंचते ऊंच, दूसरा तबका बीच में और तीसरा तबका नीचे। तो ऊंचते ऊंच कौन हुआ? ऊंचते ऊंच मूल वतन के तबके में रहने वाला है, लेकिन वहां मूर्ति नहीं होती। वहां मूर्ति दिखाई नहीं जाती। परमपिता परमात्मा सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म वतन है, यानी परमपिता परमात्मा है ऊंचे के ऊंचा, वो निराकारी स्टेज वाली बात होगी। जो निराकारी स्टेज वाला है कोई पति बाप, और जब तक सूक्ष्म वतन की स्टेज में है, माना मन चिंतन मंथन की स्टेज में है, वो सेकेंडरी स्टेज हुई, वो सेकेंडरी स्टेज भी पतितों को पावन बनाने वाली नहीं। कर्ण तबके में स्थूल शरीर है, इन बातों में बुझना नहीं है। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। परमात्मा एक ही निराकार है, क्या एक ही निराकार का अर्थ ये लगा ले कि वो बिंदु है? तो कीड़े मकोड़े भी क्या है? बिंदु है। पशु पक्षी क्या है? वो भी बिंदु है। 500-700 करोड़ मनुष्य में सारी बिंदु है, तो सारे ही निराकार हो गए। तो एक निराकार हुआ या सारे निराकार हुए? है तो सारी ही आत्मा निराकार है, लेकिन निराकारी स्टेज में टिकने की बात है। जो निराकारी स्टेज में टिकता है, ऑलराउंडर पार्ट पे जाता है, वो एक ही है। परमात्मा एक ही निराकार है। क्या कहा? ये नहीं कहा परमपिता एक ही निराकार है, परमात्मा माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो एक ही निराकार है। ये सब बातें अच्छी की बुद्धि में धारण करनी है। ऊंचते ऊंचे है निराकार, और बीच में है आकारी वतन, वहां कोई सृष्टि नहीं होती है। वो ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। वहां है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। कैसी आत्माएं? जीवित आत्माएं। और वहां है आत्माएं तो है, लेकिन जड़वत है, जैसे कोई मरा हुआ पड़ा हो। चैतन्य कहा जाता है बोलते और चालते, इसके मुख से आवाज निकले और जो चलता फिरता हो, आंखों की पुतली चलती फिरती हो, तो उसको क्या कहेंगे? चेतन। बोला वहां कोई सृष्टि नहीं है, आत्माओं की सृष्टि है, उसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहेंगे नहीं। यहां की बात नहीं, ये बुद्धि में रहना है। बरोबर हम निराकार बाबा के बच्चे हैं, आत्मा हम किसके बच्चे हैं? निराकार बाबा। निराकार बाप के बच्चे ऐसे क्यों नहीं कहा? साकार और निराकार दोनों का मेल जिसमें होता है, हम उसके बच्चे हैं। अच्छा, 500-700 करोड़ उसके बच्चे नहीं है, है?
नहीं।
क्यों
नहीं है?
क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चे बाप के सन्मुख कभी होते ही नहीं। जो सन्मुख होते हैं वो बाप के बच्चे हैं, सन्मुख ही नहीं होते, और ही विमुख हो जाते हैं द्वापर युग से। जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो साकार बाबा के बच्चे कहां हुए? कहते ना कि बाप का बच्चा नहीं है, माने अपने बाप का बच्चा नहीं, किसी दूसरे का खून पड़ गया, ही किसी दूसरे का पड़ गया है तो सगा बच्चा हुआ या सौतेला हुआ? सौतेला हुआ। तो हम निराकार बाबा की बच्ची, हम भी पहले निराकार थे, और निराकार बाप के पास रहते थे, निराकार के पास रहते थे, ये कब की बात है? निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है, जो निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती है वो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते हैं, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में अभी भी आत्माएं आ रही है, साकार में आती है, तो वो हो गया निराकारी बाप का वतन, हम आत्माएं। तो ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा होना चाहिए ना, इसका नशा, जो चीज अविनाशी है उसका नशा होना चाहिए। हम इस सृष्टि रूपी रघुमंच पर 84 जन्म लेने वाली अविनाशी आत्मा, हम एक जन्म भी कम नहीं लेते, इसलिए हमारा अविनाशी पार्ट है, तो इस बात का नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का थोड़ी नशा होना चाहिए, माना और भी जो आत्माएं हैं जो कम कला वाली परमधाम से उतरती है, 16 कला संपूर्ण नहीं बनती है, वो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? वो विनाशी पाठधारी, और हम अविनाशी पाठधारी हुए, तो विनाशी चीज का नशा नहीं होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है, माना जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं उनको कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है, और जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले बनते हैं, वो क्या है? वो अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे, इसलिए उनके बारे में गाया जाता है 9 लाख सितारे, वो तो आसमान के सितारे और हम है धरती के चेतन सितारे, उनको 9 लाख हार के रूप में भी गाया जाता है। 9 लाख ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो बाप के गले का हार बनती है, वो है बड़े से बड़ी माला, आत्मा ही अविनाशी है, देह विनाशी है, आत्मा कहती है हम 84 देह लेते, हम आत्मा रहने वाली परमधाम की बाप के साथ थी, वहां से यहाँ आई है पाठ बजाने, आत्मा कहती है ओ बाबा साकारी शक्ति में साकारी बाबा, क्या साकारी शक्ति में साकारी बाबा और निराकारी शक्ति में निराकारी बाबा, क्या बात हुई? मुरली में तो बोला साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो निराकारी सृष्टि में बाबा कहां से आ गया? बाबा तो ग्रैंड फादर को कहा जाता है, है? निराकारी सृष्टि का मतलब है सृष्टि माना शरण करने वाली, परम धाम में सृष्टि नहीं होती, ये तो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, माने माउंट आबू में ऐसा संगठन ब्राह्मणों का तैयार होना है जो आत्माएं सब 9 लाख निराकारी स्टेज में टिकी हुई है, वहां हमारा निराकार बाबा होगा, उसी स्टेज में जो हमारा बाबा होगा वो निराकार होगा, उसे साकार में आने की दरकार नहीं पड़ेगी, ये तो बिल्कुल सहज बातें हैं। हमारा आत्मा निराकारी दुनिया में रहती है, वहाँ निवास करती है। फिर हमको कहाँ पाठ बजाना है? निराकारी दुनिया से नंबर बार कहाँ आवेंगे? साकार सृष्टि। साकार सृष्टि में कहाँ से शुरुआत होगी? हाँ, धरती पर कहाँ शुरुआत होगी? भारत में कहाँ? यमुना के कंठे पर। यमुना के कंठे पर दिल्ली में कोई ऐसा स्थान तैयार होगा जहाँ महात्मा नंबर बार आती रही। तो पार्ट बजाते सूक्ष्म बदन में तो कोई पार्ट होता नहीं है क्या? सेवा का पार्ट भी सूक्ष्म बदन में नहीं होता। ब्रह्मा की आत्मा जो अभी पार्ट धारी है, पार्ट बजाए रही है स्थापना का, वो भी कहाँ बजाती है? साकार सृष्टि में बजाती है। निराकारी सृष्टि में कोई पार्ट नहीं होता और आकारी सृष्टि में भी सेवा का कोई पार्ट नहीं होता। सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी स्थूल शरीर दिखा दिया है, इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म बदनवासी कहते हैं सूक्ष्म बदनवासी, फिर भी उनका चित्र दिखाई दिया है, स्थूल चित्र भी दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि वो साकारी सृष्टि पर देह अभिमान में भी आते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो देह अभिमान में आते हैं, जरूरत नहीं है तो देह अभिमान में नहीं आते। और मनुष्य तो आते ही आते, मनुष्य सब है देह अभिमान और देवताएं हैं आत्मा और सूक्ष्म पत्रवासी देवताएं संगम युग के। संगम का मतलब ही है मेल, क्या? देह अभिमान और आत्मा अभिमान दोनों का मेल। जहां दोनों का मेल होता है उनको कहते हैं सूक्ष्म पत्रवासी देवता। मनुष्यों के पास तो कोई ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा को यहाँ ठहरा ना, माना प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा के साथ होगा या सूक्ष्म बदनवासी होगा? प्रजा के साथ होना चाहिए। सूक्ष्म बदन में तो प्रजा होती नहीं है, तो यहाँ प्रजा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी। मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बदनवासी। अरे तुम यहाँ पैदा हो रहे हो और तुम्हारा बाप सूक्ष्म बदनवासी, ये कैसे हो सकता है? माना तुमको पता नहीं है, तुमको पक्का पता है कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो और तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा भी इस सृष्टि पर साकार में हो।